तुम्हारे पीछे तुम्हारी चचेरी बहन काउंटेस माँ से मिलने आई थी। लौटने की शाम खाने की मेज पर जेनी आर्चर ने बताया। माँ और बहन के साथ खाता न्यूलैंड चौंक कर सिर उठाया। श्रीमती आर्चर की नजर शालीनता से थाली पर टिकी थी। श्रीमती आर्चर दुनिया से कट कर रहती थी, पर भुला दिया जाना उन्हें स्वीकार नहीं था, और न्यूलैंड ने भापा कि उसका चौंकना माँ को थोड़ा अखरा है। उन्होंने जेट बटनों वाली काली मखमली पोलोनेज पहनी थी, हाथ में हरे बंदर की खाल का नन्हा मफ। मैंने उन्हें कभी इतनी सजी धजी नहीं देखा, जेनी बोलती गई। रविवार दोपहर जल्दी अकेली आई। गनीमत की बैठक में आग जली थी, पास नए फैशन का कार्ड केस था। बोली, तुम उन पर इतने मेहरबान रहे कि वे हमें जानना चाहती थी। न्यूलैंड हंसा। श्रीमती ओलेंस का दोस्तों के बारे में हमेशा ऐसे ही कहती है, अपनों के बीच लौटकर वे बहुत खुश हैं। हाँ, हमसे भी यही बोली, श्रीमती आर्चर ने जोड़ा। सच कहूँ, यहाँ होने का उन्हें एहसान सा लगता है। उम्मीद है वे आपको पसंद आई माँ, श्रीमती आर्चर ने होंठ भींचे। वे लोगों को रिझाने की कोशिश जरूर करती हैं, मुझ जैसी बुढ़िया को भी। माँ को लगता है वे सीधी सादी नहीं, जेनी ने भाई पर आंखें गड़ाकर कहा। मैं पुराने ढंग की हूँ, मेरी आदर्श तो प्यारी में है, श्रीमती आर्चर बोली। आह, दोनों में कोई समानता नहीं, न्यूलैंड ने कहा। वो सेंट ऑगस्टीन से बूढ़ी श्रीमती मिंगट के लिए ढेरों संदेशे लाया था। सो लौटने के कुछ दिन बाद वो उनसे मिलने गया। बूढ़ी महिला ने उसे हमेशा से ज्यादा गर्म जोशी से अपनाया। काउंटेस ओलेंस्का को तलाक का इरादा छोड़ने पर राजी करने के लिए वे उसकी आभारी थी, और जब उसने बताया कि वो बिना इजाज दफ्तर छोड़कर सिर्फ मे को देखने सेंट ऑगस्टीन भागा था, तो वे खुलकर हंसी और रुई जैसे मुलायम हाथ से उसका घुटना थपथपाया। आहा, तो रस्सी तुड़ाकर भाग ही गए। हाँ, और ऑगस्टा और वैलेंड ने तो ऐसे मुंह बनाए होंगे जैसे दुनिया खत्म हो गई, पर हमारी नन्ही मे अलग रही होगी। क्यों? यही आशा थी, पर जो मांगने गया था वो उसने नहीं दिया। अच्छा, क्या था वो वादा? कि हम अप्रैल में शादी करेंगे। समझ नहीं आता एक और साल क्यों गंवाएं? श्रीमती मैनसन मिंगट ने अपने छोटे होंठ सिकोड़कर शरारती मुस्कान बनाई और चालाक आंखों से उसे देखा। माँ से पूछना होगा, यही कहा ना उसने, हमेशा वही, ये मिंगट सब एक जैसे हैं, लीक में पैदा होते हैं और कोई उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। मैंने ये घर बनवाया तो ऐसा हल्ला मचा जैसे मैं कैलिफोर्निया जा बसी। 40वीं सड़क के ऊपर पहले किसी ने घर नहीं बनाया था,
जैसे कोलंबस के अमेरिका खोजने से पहले कोई बैटरी के ऊपर नहीं चढ़ा था।
मैं तो यही कहूंगी, वे हंसी उड़ाती नजर से बोलती रही, कोई अलग नहीं होना चाहता, लोग अलग होने से चेचक जितना डरते हैं। शुक्र है कि मैं मामूली स्पाइसर हूँ, मेरे बच्चों में बस मेरी नन्ही एलन ही मुझ पर गई है। फिर अचानक बिना किसी सिलसिले के पूछ बैठी, आखिर तुमने मेरी नन्ही एलन से शादी क्यों नहीं की? न्यूलैंड हंसा, क्योंकि तब वो वहाँ थी ही नहीं। हाँ, सो तो है, अफसोस अब तो देर हो चुकी, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने ये बात उस बुढ़ापे की ठंडी बेपरवाही से कही जो जवान उम्मीदों की कब्र पर मिट्टी डालता है। युवक का सीना ठंडा पड़ गया, उसने झट कहा, श्रीमती मिंगट, आप वेलैंड परिवार को नहीं मना सकती, लंबी सगाई झेलने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। बूढ़ी कैथरीन ने प्रसन्न होकर उसे देखा, दिख रहा है तुम्हारी नजर तेज है, बचपन में भी खाना सबसे पहले तुम ही लेना चाहते थे, है ना? उन्होंने सिर पीछे झटक कर ठहाका लगाया, उनकी ठुड्डी छोटी लहरों सी कांपी। अरे लो, मेरी एलन आ गई, वे बोली।
उसी क्षण उनके पीछे पर्दे चुपचाप खुले और श्रीमती ओलेंस का मुस्कराती आगे आई। चेहरा जीवंत और प्रसन्न था। दादी को चूमने के लिए झुकते हुए उन्होंने आर्चर की ओर खुशी से हाथ बढ़ाया। मैं अभी इनसे पूछ रही थी, बेटी तुमने मेरी नन्ही एलन से शादी क्यों नहीं की? श्रीमती ओलेंस्का ने मुस्कान लिए आर्चर को देखा, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? अरे वो तो तू खुद पता लगा, ये अपनी प्रेमिका से मिलने फ्लोरिडा तक हो आए हैं। हाँ जानती हूँ, वे उसे देखती रही, मैं आपकी माँ से मिलने गई थी पूछने कि आप कहाँ हैं, मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो डर लगा कि कहीं बीमार तो नहीं। वो बुदबुदाया कि वो अचानक बड़ी हड़बड़ी में निकला था और सेंट ऑगस्टीन से लिखने की सोच रखी थी, और वहाँ पहुँचते ही जाहिर है आप मुझे पूरी तरह भूल गए। उन्होंने बेपरवाह अंदाज में चमकती हंसी दी, और आर्चर ने सोचा, मेरी जरूरत अब भी हो
तो भी उसने ठान लिया है कि कभी जताएगी नहीं। ये रवैया उसे चुभ रहा था।
वो अपनी माँ से मिलने जाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता था, पर दादी की शरारती नजर तले उसकी जबान जकड़ गई। देखो तो, इतना दीवाना कि बिना छुट्टी भागकर उस बुद्धू लड़की के आगे घुटने टेकने पहुंच गया। असली आशिक ऐसा ही होता है। सुंदर बॉब स्पाइसर मेरी बेचारी माँ को ऐसे ही भगा ले गया था और मेरा दूध छूटने से पहले ही उनसे ऊब गया, जबकि बस 8 महीने रुकना था। पर तुम स्पाइसर नहीं हो बरखुरदार, तुम्हारे और मैं के भाग्य से उस घराने का बिगड़ैल खून बस मेरी बेचारी एलन में बचा है, बाकी सब नमूने के मिंगट है, बुढ़िया ने हिकारत से कहा। आर्चर महसूस कर रहा था कि दादी के पास बैठी श्रीमती ओलेंस का अब भी उसे सोच में डूबी निगाहों से परख रही हैं। उनकी आंखों की चमक बुझ गई थी और उन्होंने बहुत कोमलता से कहा, दादी हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे कि इनकी मर्जी के मुताबिक करें। आर्चर विदा लेने उठा और जब उसका हाथ श्रीमती ओलेंसका के हाथ से छुआ,
उसे लगा कि वे उस बिना जवाब वाली चिट्ठी का जिक्र होने का इंतजार कर रही हैं। आपसे कब मिल सकता हूँ? दरवाजे तक साथ आती उनसे उसने पूछा।
जब चाहें, पर वो छोटा घर फिर देखना है तो जल्दी कीजिए। अगले हफ्ते मैं वहाँ से जा रही हूँ। नीची छत वाली उस बैठक में दिए की रोशनी में बिताए घंटों की याद से उसके सीने में टीस उठी। घड़ियां थोड़ी थी पर गहरी खुदी स्मृतियों से भरी। कल शाम? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ कल, पर जल्दी आइए, मुझे बाहर जाना है। अगला दिन रविवार था और रविवार शाम को वे निकल रही हैं तो मंजिल श्रीमती लेम्यूअल स्ट्रूथर्स का घर ही हो सकती थी। आर्चर को महीन झुंझलाहट हुई। उनके वहाँ जाने से उतनी नहीं बल्कि वैन डर लाइडन दंपति की परवाह किए बिना मनचाही जगह जाने का उनका ढंग उसे भाता था, जितनी इस बात से कि वहाँ वे ब्यूफर्ट से जरूर मिलेंगी और शायद जानबूझकर उसी से मिलने जा रही हैं। ठीक, कल शाम, उसने दोहराया और मन ही मन तय किया कि जल्दी नहीं जाएगा। देर से पहुंचकर या तो उन्हें श्रीमती स्ट्रूथर्स के यहाँ जाने से रोक देगा या उनके निकल जाने के बाद पहुंचेगा। सब मिलाकर यही सबसे सीधा हल लगा। पर हुआ ये कि जब उसने बेल की लता तले घंटी बजाई तो बस 8:30 बजे थे, इरादे से आधा घंटा पहले।
पर एक अजीब बेचैनी उसे उनके दरवाजे तक खींच लाई थी। फिर भी उसने सोचा, श्रीमती स्ट्रूथर्स की रविवारी शामें नाच पार्टी नहीं होती। उनके मेहमान अपनी गलती छोटी दिखाने के लिए प्रायः जल्दी जुट जाते हैं। श्रीमती ओलेंसका के दालान में घुसते ही जिस चीज की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो थी वहाँ पहले से टंगी टोपियाँ और ओवरकोट। खाने पर लोग बुलाए थे तो उसे जल्दी क्यों बुलाया? नास्तासिया उसका कोट बाकियों के पास रखने लगी तो उसकी खीज कौतूहल में बदल गई। ऐसे अजीब कोट उसने किसी भले घर में नहीं देखे थे और एक नजर काफी थी ये यकीन करने को कि उनमें से कोई जूलियस ब्यूफर्ट का नहीं है। एक रेडीमेड ढंग का रोयनदार पीला ओवरकोट था, दूसरा बेहद पुराना घिसा लबादा, उस किस्म का जिसे फ्रांसीसी मैकफार्लन कहते हैं, मानो किसी महाकाय आदमी के लिए सिला गया हो, और लंबे बेरहम इस्तेमाल के निशान लिए। उसकी हरियाई काली सिलवटों से गीले बुरादे की गंध उठती थी, जैसे वो घंटों शराब खानों की दीवारों से टिका रहा हो। ऊपर एक झिस्टा भूरा मफलर और पादरियों जैसी बनावट की पुरानी नमदा टोपी रखी थी। आर्चर ने सवालिया भौहें उठाकर नास्तासिया को देखा। उसने जवाब में अपनी भौहें उठाई, तकदीर मानती जिया कही और बैठक का दरवाजा पूरा खोल दिया। युवक ने तुरंत ताड़ लिया कि घर की मालकिन कमरे में नहीं है
और अचरज से देखा कि आतिशदान के पास एक दूसरी महिला खड़ी है, लंबी दुबली बेडौल। वो झालरों और फुंदों की पेचीदा अस्त व्यस्तता ओढ़े थी। चार खाने धारीदार और सादी पट्टियां ऐसे नमूने में लगीं कि मंशा कोई ना भांप सके। सफेद होना चाहकर बस फीके पड़ सके बालों पर स्पेनी कंघी और काली लेस की ओढ़नी टिकी थी और साफ दिखती रफू की हुई रेशमी दस्तानों में गठिया से ऐंठे हाथ ढके थे। उनके पास सिगार के धुएं के बादल में उन दोनों कोटों के मालिक खड़े थे, दोनों उन्हीं दिन भर के कपड़ों में जो साफ था कि सुबह से नहीं उतरे। एक को देखकर आर्चर चौंक गया, वो नेड विंसेंट था, दूसरा अधिक उम्र का अनजान जिसकी विशाल देह ने बता दिया कि मैकफार्लेन उसी का है। भूरे बिखरे बालों वाला दुर्बल शेर सा सिर लिए था और बाहें ऐसे बड़े इशारों में हिला रहा था मानो घुटनों के बल बैठी भीड़ को आशीर्वाद दे रहा हो। तीनों गलीचे पर खड़े उस असाधारण बड़े गहरे लाल गुलाबों के गुच्छे को देख रहे थे। डंठल पर बैंगनी पैंजी बंधी और वो उसी सोफे पर रखा था जहां श्रीमती ओलेंस्का बैठती थीं। इस मौसम में इन फूलों की क्या कीमत रही होगी। हालांकि असली चीज तो भावना है। आर्चर के भीतर आते ही महिला प्रशंसा में सांस छोड़ते हुए कह रही थीं। तीनों चौंक कर मुड़े और महिला हाथ बढ़ाती आगे आई। प्रिय मिस्टर आर्चर, लगभग मेरे भाई न्यूलैंड जैसे, वे बोली। मैं मार्कीजा मैनसन हूँ। आर्चर ने झुककर प्रणाम किया और वे बोलती गईं, एलेन कुछ दिनों से मुझे पनाह दिए है।
मैं क्यूबा से आई हूँ, सर्दियाँ वही स्पेनी दोस्तों संग बिताई। प्यारे कुलीन लोग, पुराने कैस्टील का सबसे ऊंचा अभिजात वर्ग, काश आप उनसे मिल पाते, पर मुझे यहाँ हमारे महान मित्र इन डॉक्टर कार्वर ने बुलाया। आप प्रेम घाटी समुदाय के संस्थापक डॉक्टर अगाथोन कार्वर को नहीं जानते। डॉक्टर कार्वर ने अपना शेर सा सिर झुकाया और मार्कीजा बोलती रही, आह न्यूयॉर्क, यहाँ आध्यात्मिक जीवन अब भी कितना कम है, पर देखती हूँ विंसेंट साहब आपको जानते हैं। हाँ, काफी पहले से जानता हूँ, पर उस रास्ते से नहीं, विंसेंट ने अपनी रूखी मुस्कान से कहा। मार्कीजा ने उलाहने में सिर हिलाया। आप इतने पक्के कैसे हो सकते हैं विंसेंट साहब, आत्मा तो हवा की तरह है, जिधर चाहे बहती है। सुनो ओ सुनो, डॉक्टर कार्वर गूंजती आवाज में बुदबुदाए। पर बैठिए मिस्टर आर्चर, हम चारों ने बड़ा आनंददायक भोजन किया। मेरी बच्ची कपड़े बदलने ऊपर गई है, वो आपकी राह देख रही है, अभी उतर आएगी। हम इन अद्भुत फूलों को सराह रहे थे, वो उतरेगी तो कैसी चौंकेगी। विंसेंट अब भी खड़ा था। मैं चलता हूँ, श्रीमती ओलेंस्का से कह दीजिएगा, वे मोहल्ला छोड़ेंगी तो हम सब अनाथ से हो जाएंगे। ये घर सचमुच नखलिस्तान रहा है। ओ, पर वे आपको नहीं छोड़ेंगी, कविता और कला उनके लिए प्राणवायु है। आप कविता लिखते हैं विंसेंट साहब? जी नहीं, पर कभी कभार पढ़ लेता हूँ, विंसेंट ने कहा। सबको प्रणाम कर वो कमरे से खिसक गया। थोड़ी रूखी आत्मा है पर प्रतिभा है।
डॉक्टर कार्वर, आपको नहीं लगता उसमें प्रतिभा है?
मैं प्रतिभा के बारे में सोचता ही नहीं, डॉक्टर कार्वर ने गंभीरता से उत्तर दिया। आह आह, वे प्रतिभा के बारे में सोचते ही नहीं। हम कमजोर मनुष्यों पर कितने निर्दयी हैं मिस्टर आर्चर, पर बात यह है कि वे केवल आत्मा का जीवन जीते हैं। आज रात भी वे श्रीमती ब्लेंकर के यहाँ होने वाले अपने व्याख्यान की मानसिक तैयारी में हैं। डॉक्टर कार्वर, ब्लेंकर के यहाँ निकलने से पहले मिस्टर आर्चर को अपनी वो ज्योतिर्मय खोज प्रत्यक्ष संपर्क समझाने का समय मिलेगा? पर नहीं, देखती हूँ 9 बजने को है। जब इतने लोग आपके संदेश की बाट जोह रहे हों तो आपको रोकने का हमें हक नहीं। डॉक्टर कार्वर कुछ निराश दिखे, पर सोने की जेब घड़ी को श्रीमती ओलेंस्का की छोटी सफरी घड़ी से मिलाकर उन्होंने अनमने ढंग से भारी देह उठाई। बाद में आपके दर्शन होंगे प्रिय मित्र, उन्होंने मार्कीजा से पूछा। वे मुस्कराई। एलन की गाड़ी आते ही मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी, ईश्वर करे तब तक व्याख्यान शुरू न हुआ हो। डॉक्टर कार्वर ने अर्थ भरी दृष्टि से आर्चर को देखा। इन युवा सज्जन को मेरे अनुभवों में रुचि हो तो श्रीमती ब्लेंकर सहर्ष इन्हें साथ लाने देंगी। ओ हो, पाता तो कितना अच्छा था, श्रीमती ब्लेंकर भी प्रसन्न होती, पर डर है कि मेरी एलेन मिस्टर आर्चर पर भरोसा किए बैठी है। तब तो खेद है, ये रहा मेरा कार्ड, कहकर डॉक्टर कार्वर ने कार्ड आर्चर को थमाया। गॉथिक अक्षरों में लिखा था, अगाथोन कार्वर, प्रेम घाटी, किटास्क्वाटामी, न्यूयॉर्क। डॉक्टर झुककर विदा हुए और मार्कीजा ने दुख की या राहत की कौन जाने एक आह भरकर आर्चर को फिर बैठने का इशारा किया।
एलन अभी उतर आएगी, उसके आने से पहले ये शांत बातचीत मुझे बहुत भा रही है, आर्चर ने भेंट की प्रसन्नता के 2 शब्द बुदबुदाए। और मार्कीजा आहों भरी आवाज में बोलती रही, मैं सब जानती हूँ प्रिय मिस्टर आर्चर, मेरी बच्ची ने बताया, आपने उसके लिए जो जो किया, आपकी बुद्धिमानी भरी सलाह, आपकी साहसी दृढ़ता, ईश्वर का शुक्र है तब तक देर नहीं हुई थी। युवक असमंजस में सुनता रहा, क्या कोई बचा भी है जिसे श्रीमती ओलेंस्का ने ये बात न बताई हो? श्रीमती ओलेंस्का बढ़ा चढ़ाकर आंकती हैं। मैंने तो बस उनकी मांगी हुई कानूनी राय दी थी।
आह, पर वो राय देते हुए आप अनजाने में उसका माध्यम बने, जिसे हम आधुनिक लोग विधाता को क्या कहते हैं मिस्टर आर्चर। महिला ने सिर टेढ़ा कर रहस्य से पलकें झुकाते हुए कहा, आपको पता ही नहीं था कि ठीक उसी घड़ी मुझसे मदद मांगी जा रही थी। अटलांटिक पार से पुकार आ रही थी। उन्होंने कंधे के ऊपर से यूं देखा जैसे किसी के कान लगने का डर हो। कुर्सी और पास खींची और हाथी दांत का छोटा पंखा होंठों से लगाकर उसके पीछे से फुसफुसाई। वो खुद काउंट था, मेरा बेचारा पागल ना समझ ओलेंस्की। वो बस इतना चाहता है कि उसे वापस ले जाए, उसी की शर्तों पर। हे भगवान, आर्चर चौंक कर उछल खड़ा हुआ। आप सहर उठे? हाँ, जाहिर है, समझती हूँ मैं बेचारे स्टानिस्लास का बचाव नहीं करती, हालांकि वो मुझे हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहता रहा। वो अपनी सफाई नहीं देता,
वो बस उसके पैरों में गिर पड़ता है मेरे जरिए। उन्होंने अपनी सूखी छाती थपथपाई। उसकी चिट्ठी यहाँ है।
चिट्ठी? श्रीमती ओलेंस्का ने देखी है? सदमे से भन्नाए सिर के साथ आर्चर हकलाया। मार्कीजा मैनसन ने धीरे से सिर हिलाया। समय, मुझे समय चाहिए। मैं अपनी एलेन को जानती हूँ, स्वाभिमानी है, जिद्दी। कहूँ कि माफ करने में जरा कठोर, पर भगवान के लिए माफ करना एक बात है, उस नर्क में लौटना बिल्कुल दूसरी। हाँ सही, मार्कीजा ने हामी भरी, मेरी संवेदनशील बच्ची भी यही कहती है। पर भौतिक पक्ष देखें मिस्टर आर्चर, अगर उस पर नजर डालने की कृपा करें, जानते हैं उसने क्या क्या छोड़ा? सोफे पर रखे हुए गुलाब, वैसे गुलाबों के बीघे शीश घरों में और खुले में, नीस के उसके शानदार सीढ़ीदार बागों में, जड़ाऊ गहने, ऐतिहासिक मोती, सोबियस की पन्ने, सेबल की खाले, पर उसे इनकी रत्ती भर परवाह नहीं। कला और सौंदर्य, वही उसका प्रेम है, उन्हीं के लिए वो जीती है मेरी तरह, और वो इन्हीं से घिरी थी। चित्र, बेशकीमती फर्नीचर, संगीत, चमकदार गुफ्तगू, आह, इन चीजों का, नौजवान, माफ करना, यहाँ अंदाजा भी नहीं। और उसके पास ये सब था, साथ में सबसे बड़ों की श्रद्धांजलि। वो बताती है कि न्यूयॉर्क में उसे सुंदर तक नहीं माना जाता। हे राम, उसकी तस्वीर 9 बार बनी। यूरोप के सबसे बड़े कलाकार उस सौभाग्य के लिए गिड़गिड़ाते थे।
क्या ये सब कुछ भी नहीं? और उस पति का पछतावा जो पत्नी को पूछता है? कथा चरम पर पहुंची तो मार्कीजा के चेहरे पर मुग्ध स्मृति का ऐसा भाव आया कि आर्चर अचर्ज से सुन्न न होता तो हंस पड़ता। किसी ने भविष्यवाणी की होती कि बेचारी मेडोरा मैनसन पहली ही भेंट में उसे शैतान की दूती के रूप में दिखेंगी तो वो हंसकर टाल देता, पर अब हंसी नहीं आ रही थी और वे उसे ठीक उसी नर्क से निकलकर आई लगती थी जिससे एलन ओलेंस्का अभी अभी छूटी थी। ये सब वे अभी नहीं जानती? उसने अचानक पूछा। मार्कीजा ने बैंगनी सी उंगली होठों पर रखी। सीधे तौर पर कुछ नहीं, पर भनक, कौन कह सकता है? सच पूछिए मिस्टर आर्चर, तो आपसे मिलना मैंने इसीलिए चाहा। जब से सुना कि आपने कितना दृढ़ रुख लिया और उस पर आपका कितना असर है, तभी से आस थी कि आपका साथ मिलेगा, कि आपको मना सकूंगी, कि वे लौट जाएं, इससे तो उन्हें मरा देखना बेहतर। युवक भड़क कर चीखा। आह, मार्कीजा बिना किसी जाहिर रोष के बुदबुदाई। कुछ देर वे आराम कुर्सी में बैठी, दस्ताने पहने उंगलियों के बीच हाथी दांत का छोटा पंखा खोलती बंद करती रहीं। फिर अचानक सिर उठाकर कान लगाया। वो आ रही है, उन्होंने झट फुसफुसाकर कहा और सोफे पर रखे गुलदस्ते की ओर इशारा किया। तो मिस्टर आर्चर, यही समझो कि आपको वो पसंद है? आखिरकार विवाह विवाह है और मेरी भतीजी अब भी किसी की पत्नी है।